अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है चुटकी भर सिंदूर। उसका नाम कमलिनी था। वो कमलिनी के समान ही कोमल और सुंदर थी। सुनहला रंग जिसमें लालिमा का ऐसा समन्वय था कि लोग चौंधिया जाते थे। आंखों का क्या कहना, मानो झील में दो कमल खिल गए हों। चमकते दांतों की पंक्तियां बरबस अपनी तरफ खींचती थीं। पतले गुलाबी ओठों की लालिमा गुलाब को लजा कर रख देती थीं। उसके घने लंबे केश जब वो खोलती तो ऐसा लगता मानो घटा घिराई हो। भोली चितवन ऐसी थी कि जिधर एक बार देखती लोग पलक झपकना भूल जाते। उसके ओठों पर हरदम मुस्कुराहट खेलती रहती थी। यही रूपसी कमलिनी मेरी अभिन्न सहेली थी। हम दोनों दूसरी कक्षा से पढ़ते पढ़ते दसवीं क्लास में पहुंच गए थे। स्कूल के वार्षिक उत्सव में कमलिनी हमेशा भाग लेती थी। अभिनय की अद्भुत क्षमता उसमें थी। लगता था वो कला घुट्टी में पीकर आई है। जब वो स्टेज पर आती तो तालियों से हॉल गूंज उठता था। एक तो उसका सौंदर्य, ऊपर से प्राकृतिक अभिनय से वो लोगों को मुग्ध कर देती। क्लास में हमेशा प्रथम आना भी उसका विशिष्ट गुण था। रूप और गुण का ऐसा समन्वय कम ही देखने में आता है। कट्टर ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था। पिता बहुत ऊंचे पद पर थे। वे बड़े ही कठोर तथा कट्टर स्वभाव के थे। बेटी के सिर से जरा भी पल्लू हटा नहीं कि वो चीख कर कहते, शर्म नहीं आती? तुझे पढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बेहया बन जाए। खबरदार, जो आइंदा से सिर से पल्लू हटा। उनकी रौबीली आवाज से कमलिनी कांप उठती थी। माँ उसे बहुत प्यार करती थी, पर पति के आगे मुंह खोलने की उसकी हिम्मत भी पस्त हो जाती थी। 40-50 साल पहले लड़कियों पर कड़ी पाबंदियां थीं, पर कमलिनी के पिता ने तो हद ही कर दी थी। ऐसे संकीर्ण विचारों का आदमी बेटी को पढ़ाए, ये एक आश्चर्यजनक बात लगती थी। हमारी क्लास में निशा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। उसका घर कमलिनी के घर के पास था। कमलिनी अक्सर उसके घर जाती थी और वो भी कमलिनी के घर आती थी। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। निशा के पिता मेजर थे, वे मराठा थे। मेजर के दो ही बच्चे थे, एक निशा और उसका भाई प्रदीप। प्रदीप बड़ा ही रूपवान तथा मेधावी था। वो इंजीनियर था। धीरे धीरे वो कमलिनी की तरफ आकर्षित होता गया। और कमलिनी, उसका क्या पूछना, उसकी आंखें तो हमेशा प्रदीप को देखने के लिए आतुर रही थीं। कुछ दिनों बाद प्रदीप के माता पिता को पता चल गया कि उसका बेटा कमलिनी से विवाह करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदीप के माता पिता को भी कमलिनी बहुत पसंद थी। वे खुले विचारों के थे। उन्होंने प्रदीप से कहा कि कमलिनी के पिता के पास जाकर विवाह की बात चलाएंगे। 2-3 दिन बाद ही मेजर कमलिनी के पिता के पास पहुंच गए और इस विवाह की चर्चा चलाई। बिना पूरी बात सुने ही कमलिनी के पिता आग बबूला हो गए। वे बोले, हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, आपने विवाह की बात चलाने की हिम्मत कैसे की? मैं अपनी बेटी का गला घोंट दूंगा, पर दूसरी जाति में कदापि विवाह नहीं करूंगा। इतनी बेइज्जती होने पर भी मेजर ने हार नहीं मानी, बल्कि बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं, हम बुजुर्गों को भी उनकी खुशी में सहयोग देना चाहिए। कमलिनी के पिता गरजे, क्या कहा, कमलिनी प्रदीप से विवाह करना चाहती है? उसकी इतनी हिम्मत, टांगे तोड़कर रख दूंगा। फिर आंखें तरेरते हुए मेजर से बोले, मेजर साहब, आप इसी समय मेरे घर से चले जाइए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अपमान का घूंट पीकर मेजर लौट आए। उन्हें आया देख प्रदीप भागा भागा आया, पर पिता के चेहरे पर क्रोध तथा निराशा देखकर वो सहम गया। मेजर बोले, बेटा प्रदीप, आज जो अपमान कमलिनी के पिता ने मेरा किया है, उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। हर कोशिश करके मैं हार गया, ये विवाह होना असंभव है। मैं जल्द ही किसी सुयोग्य लड़की से तुम्हारा ब्याह कर दूंगा। प्रदीप बोला, पिताजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिवा कमलिनी के मैं किसी दूसरी लड़की से विवाह करके उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। अभी विवाह के लिए काफी समय पड़ा है, हो सकता है भगवान मुझ पर कृपालु हो जाएं और कमलिनी के पिता का विचार बदल जाए। मेजर बोले, बेटा, तुम गलती पर हो। उनके जैसा कट्टर तथा जिद्दी आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी जाति तथा पद का बहुत अभिमान है। खैर, अगर तुम कुछ साल रुकना चाहते हो तो रुक कर देख लेते हैं। प्रदीप को अब कमलिनी के दर्शन दुर्लभ हो गए। उस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं और कमलिनी वो तो पूरी तरह कुमला गई थी। उसके चेहरे पर उदासी के घने बादल छाए रहते थे। उसकी वो मोहक मुस्कुराहट उससे कोसों दूर भाग गई थी। इधर कमलिनी के पिता ने उसके लिए तेजी से वर खोजना शुरू कर दिया था, पर हमरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। एक दिन कमलिनी के पिता को फालिज गिर गया। अब कमलिनी का कार्य पिता की सेवा करना रह गया। मैट्रिक का परीक्षा फल निकला। कमलिनी ने प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान पाया था। पिता की सेवा के संग संग उसने इंटरमीडिएट की तैयारी घर पर ही करनी शुरू कर दी। पिता ने भी आपत्ति नहीं की। अपने प्रति कमलिनी का सेवा भाव देखकर उनका हृदय भी उसके प्रति सदैव हो गया। 3 साल कमलिनी के पिता को बिस्तर पर पड़े हो चुके थे। इस बीच कमलिनी ने प्राइवेट इंटरमीडिएट परीक्षा पास करके बीए की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके जीवन में 2 ही काम रह गए थे, पिता की सेवा तथा लगन से पढ़ाई करना। कई साल गुजर जाने पर कमलिनी से विवाह की कोई आशा नहीं रही। तब पिता के बहुत जोर देने पर प्रदीप को विवाह करना पड़ा। कमलिनी की प्यार की मजबूत जड़ें जो उसके हृदय में फैल गई थीं, उसे वो उखाड़ नहीं पाया। पत्नी सरिता को वो उसका हक नहीं दे पाया। पति पत्नी के बीच एक अभेद्य दीवार खिंच गई थी। सरिता कुढ़ती रहती। जब कभी प्रदीप अकेला उदास बैठा रहता तो वो व्यंग से कहती, क्या मन मंदिर की देवी बहुत याद आ रही है? यहाँ बैठे उसकी आराधना क्यों कर रहे हो? जाओ मिलो। आहत होकर प्रदीप कहता, सरिता क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? मैंने तुम्हारा कभी तिरस्कार नहीं किया, हमेशा प्रयत्न यही रहा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें दूं। सरिता तमक कर कहती, जो आदमी 4 सालों में भी अपने हृदय से किसी की स्मृति को नहीं निकाल पाया, वो किसी को आगे भी उसका अधिकार देने का क्या दावा करेगा? जब प्रदीप ने देखा कि हिंदुस्तान में रहकर वो कमलिनी को भुला नहीं पाएगा, तो वो पत्नी सरिता को लेकर अमेरिका आ गया। इधर कमलिनी के पिता का देहांत हो गया। कमलिनी इन दिनों हिंदी में शोध कार्य कर रही थी। चूंकि उसने विश्वविद्यालय में हिंदी में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान पाया था, इस कारण उसे शोध कार्य करते हुए भी प्रवक्ता का पद मिल गया। वर्षों की उसकी साध पूरी हो गई। उसने 2 साल में ही डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली। विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसरों ने उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उसने कहा, मैंने अपना जीवन साहित्य की सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया है। विवाह के बंधन में बंधकर मैं ये कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाऊंगी। अब भी वह नाटकों में कार्य करके नाम कमा रही थी। लगता था अस्थिर मन को ठौर मिल गया है। उसके सौंदर्य में अब गरिमा थी। उसके सहयोगी उसकी बहुत इज्जत करते थे। पुरुषों के संग कार्य करते हुए भी कभी उसके चरित्र के बारे में कोई अफवाह सुनाई नहीं पड़ी। भाइयों ने 1-2 बार विवाह की चर्चा चलाई तो वो दृढ़ शब्दों में बोली, मैं आजन्म अविवाहित रहूंगी, आप जोर न दें, यही अच्छा रहेगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। भाइयों को कमाऊ बहन तथा भाभियों को घर की देख रेख करने वाली मुफ्त की नौकरानी तथा हर महीने एक मोटी रकम मिल रही थी। उन्हें क्या पड़ी थी जो जोर देते। 10 साल बाद प्रदीप भारत लौटा। वो कमलिनी को नहीं भुला पाया था। एक दिन वो विश्वविद्यालय पहुंच गया। कमलिनी की तरफ गमगीन आंखों से देखकर बोला, कमलिनी 1,00,000 कोशिश करने पर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। कमलिनी दृढ़ शब्दों में बोली, प्रदीप मुझे भूल जाओ, अब तुम्हारा कर्तव्य अपनी पत्नी को सुखी रखना है। किसी का हक छीनकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। अपनी जिंदगी में विष मत घोलो। मेरा तुम्हारा आत्मा का संबंध है, शारीरिक नहीं। जीवन पर्यंत इस आत्मा तथा शरीर पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। इस शरीर तथा आत्मा पर कभी किसी पुरुष का अधिकार नहीं हो पाएगा। ये तुम्हारी धरोहर है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सत्य है, पर ये आत्मा से आत्मा का प्यार रहेगा। लौट जाओ प्रदीप, तुम अपनी पत्नी को इतना प्यार दो कि पिछली सभी बातें उसके लिए दिवा स्वप्न बनकर रह जाएं। प्रदीप की आंखें छल छला उठी। वो बोला, कमलिनी जब इतने सालों में भी मैं तुम्हें नहीं भुला पाया तो आगे क्या भुला पाऊंगा। कमलिनी रुंधे कंठ से बोली, प्रदीप इस शरीर से इतना मोह क्यों? अब इसमें न तो यौवन की ताजगी है, न ही उल्लसित हृदय। एक थका हारा शरीर है जो अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। ये तुम्हें अब क्या दे पाएगा? अब इसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा है। प्रदीप बोला, कमलिनी मुझे अब तुम्हारे शरीर से कुछ नहीं लेना है, वो कुरूप हो या थका हुआ, मैं तो जीवन भर बस तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। गंभीर स्वर में कमलिनी बोली, प्रदीप इस जीवन में तो ये संभव नहीं होगा। जैसे मैं दूर रहकर भी तुम्हारी आत्मा से स्नेह करती हूँ, उसी प्रकार तुम भी आत्मा से प्यार करो, इसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी। पर अपनी पत्नी के संग अन्याय मत करो, वरना भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। अपनी पत्नी तथा बच्चों में रम जाओ, तभी तुम्हें सुख तथा संतोष मिलेगा। मुझे भी संतोष रहेगा कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। उदास प्रदीप अमेरिका लौट गया। वर्षों बीत गए। कमलिनी ने विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर लिया था। पूरे चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा बिछ गया था। चांदी से चमकते बाल उसकी गरिमा को बढ़ा रहे थे। माथे पर चमकती लाल बिंदी पर निगाह टिक कर रह जाती थी। उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मैं हफ्ते में एक बार उससे अवश्य मिलने जाती थी। इधर अमेरिका में प्रदीप का मन अशांत रहने लगा था। उसकी आत्मा की आवाज उससे कहती थी, भारत लौट जाओ। और एक दिन बिना सरिता से कहे वो भारत लौट आया। यहाँ आने पर उसे पता चला कि कमलिनी की हालत अच्छी नहीं है। एक शाम जब मैं कमलिनी के घर पहुंची तो देखा दीपक में बहुत कम तेल बचा था। उसने भरी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, जिस प्रेम रूपी थाती को 50 साल से मैं अपने हृदय में छिपाए बैठी थी, आज वही थाती हृदय से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। न जाने ये 50 साल इस हृदय ने इस प्रेम रूपी थाती को कितनी मुश्किल से छिपा कर रखा था। आज न मुझे समाज का डर है, न ही आत्मा का। मैं उनकी जंजीरों से मुक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ रमना नहीं है। मैं एक ऐसे संसार में जा रही हूँ जहाँ पाबंदियाँ तथा डर नहीं है, पर जाते जाते एक लोभ को नहीं छोड़ पा रही हूँ। एक अतृप्त अभिलाषा मुझे कोंच कोंच कर अपनी बात मनवाने पर तुली है। 70 वर्षीय जीवन में जिसमें मैंने अपने काबू में रखा था, आज वो बेकाबू हो गई है। शायद मैं कमजोर पड़ गई हूँ, या अंत समय तक आत्मा अतृप्त होकर जाना नहीं चाहती। वो बागी हो गई है। लगता है वो अपनी बात मानकर ही मुझे जाने की अनुमति देगी। जीवन की इस अंतिम वेला में वो बावरे नैन क्यों नहीं मुंद रहे हैं, किसके आने की ये उत्कंठा से बाट जोह रहे हैं। शायद ये इनकी मृग तृष्णा ही तो है, क्या वे आएंगे। लगता है इन बावरी नैनों को पूरी आशा है कि अंतिम समय में उनकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, और इसी विश्वास पर ये नैन रूपी दो दीपक अभी तक टिमटिमा रहे हैं। उसकी निस्तेज आंखें एक बार चारों तरफ घूमी, फिर उसने मेरी तरफ अपनी गमगीन आंखें उठाकर कहा, शकुन इस अंत समय में सभी लोक लाज को तिलांजलि देकर अपने हाथों से चुटकी भर सिंदूर डलवा कर इस अतृप्त आत्मा को तृप्त करके जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दोगी। मैं रो पड़ी। धीरे धीरे उसकी आंखें निस्तेज होने लगी। यकायक वर्षों पहले की एक चिर परिचित मधुर आवाज सुनकर उसकी आंखें स्वतः खुल गई। उसने देखा वृद्ध प्रदीप डबडबाई आंखों से हाथ में सिंदूर की डिब्बी लेके खड़ा है। तृप्ति से उसकी आंखें चमक उठी। 70 वर्षीय कमलिनी नवोढ़ा बन गई। लज्जा से उसके गाल आरक्त हो गए। आनंद अतिरेक से उसका रोआ रोआ खिल उठा। उसका मस्तक झुक गया। वृद्ध प्रदीप ने कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर की गाढ़ी रेखा खींच दी, वो लक्ष्मण रेखा जिसे अब कोई पार नहीं कर पाएगा। उस अतृप्त आत्मा के चेहरे पर तृप्ति की आभा फैल गई। धीरे धीरे वे आंखें बंद हो गईं। वृद्ध प्रदीप के मुंह से गहरा उच्छ्वास निकला, फिर बिना किसी तरफ देखे वो बढ़ता गया उस दिशा की ओर जिसका छोर उसे स्वयं भी मालूम नहीं था।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।